पृष्ठ संख्या 88। भाषिक संरचना और गीति तत्व। निराला के संपूर्ण अंतः संगीत में सुर और शब्द का अद्भुत संयोग है। उनकी भाषिक संरचना का मूल आधार यही है। उनके गीतों के शब्दबंध कहीं भी शब्दार्थ को प्रधान मानकर निर्मित नहीं हुए हैं। उनमें से फूटने वाला अर्थ, जिस पर अक्सर हम चमत्कृत होते हैं, दरअसल शब्दों की ध्वनि लहरियों और उनमें निहित रंग वैविध्य से अधिक प्रकट होता है। अर्थ को स्वर का आधार देकर ही निराला ने अपने गीतों की भाषिक संरचना तैयार की है। अक्सर वह शब्द की ध्वनि और उसके स्वर आवर्तों से ही पहले आकर्षित होते हुए दिखाई देते हैं। वह शब्द को उस छोर पर जाकर पकड़ते हैं जहाँ उसके भीतर का सघन स्वर कवि के मौन संगीत को ध्वनित कर सके। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए प्रसाद ने उनके गीतों को चित्र कहा है, जिसकी रेखाएं पुष्ट और वर्णों का विकास भास्वर है। यह वर्ण भास्वरता ही उनके गीतों की भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता है, लेकिन यह भास्वरता अर्थ संधान से नहीं आती, ध्वनि लहरियों से उजागर होती है। इसीलिए निराला के अधिकांश गीतों की भाषिक संरचना संश्लिष्ट बिंबात्मक और सामासिक परियोजना से पूर्ण है। शब्द में स्वर लहरियों और रंगों के इसी संधान की प्रमुखता के कारण उन्होंने अपने अधिकांश बिंब प्रकट से लिए हैं। इन बिंबों में कहीं भी इखरापन नहीं दिखाई देता। आनंद, उत्फुल्लता, उदासी, अवसन्नता, आत्मजर्जरता या आत्मतोष के भाव प्रयोगों को शब्दों के स्वर और रंग में निराला ने एकम एक कर दिया है। इसीलिए उनके गीत कहीं भी विवरणात्मकता का आभास तक नहीं देते। उनमें एक गहरी संकेतात्मकता हर जगह प्रधान है। निराला कहते नहीं, संकेतित कर देते हैं। मौन की यही भास्वरता उनके गीतों की मुख्य संवेदना है। निराला ने अपने गीतों को दो भागों में विभाजित किया है, लिरिक और सांग। मेरा ख्याल है कि सांग से उनका तात्पर्य उन गीतों से है जिनकी स्वरलिपि बनाई जा सकती है। गीतिका में कुछ गीतों की स्वरलिपि उन्होंने स्वयं भी बनाई है। लिरिक शायद उन्होंने अपने उन गीतों को कहा है जिन्हें वह मुक्त गीत कहकर परिभाषित करते हैं। पृष्ठ संख्या 89। स्वर के साथ साथ भाव और छंद जहाँ तीनों मुक्त हों, उसे निराला ने मुक्त गीत कहा है। उनके अनुसार परिमल के दूसरे खंड में इस ढंग की रचनाएं संकलित हैं। उनकी मुख्य विशेषता यह है कि उनका छंद मुक्त है, लेकिन अत्यानुप्रास फिर भी बरकरार है। इसीलिए असम मात्रिक होने के बावजूद वे गाई जा सकती हैं। इस तरह की रचनाओं के उदाहरण स्वरूप निराला ने अपनी बादल राग की कविताएं उद्धृत की हैं। जहाँ तक स्वरलिपि बनाने का संबंध है, अपने गीतों को लेकर निराला ने रविंद्रनाथ की तरह कोई प्रयोग नहीं किया है। उनका झुकाव मुख्यतः शास्त्रीयता की ओर है। गीतिका की भूमिका में जहाँ उन्होंने अपने कुछ गीतों की स्वरलिपि बनाई है, उनमें शास्त्रीयता ही प्रमुख है। वह धम्मार, रूपक, झपताल, तीन ताल, चौताल और दादरा की चर्चा करके ही छोड़ देते हैं। गीतिका की भूमिका पढ़ने से ही यही लगता है कि वह अपने गीतों को संगीत में ढालने की प्रक्रिया में रविंद्रनाथ की तरह प्रेरणा के कायल नहीं है। दरअसल निराला के सामने समस्या ही दूसरी है। वह खड़ी बोली के अपने गीतों द्वारा इस लांछन को धोने में लगे हुए हैं कि उन्हें गाया नहीं जा सकता। वह शास्त्रीय गवैये द्वारा ब्रजभाषा में तुतलाने की निंदा करते हुए अपने गीतों की रचना द्वारा यह सिद्ध कर देना चाहते हैं कि खड़ी बोली में भी वह लोच, वह स्वर माधुर्य, वह शब्द लास्य विद्यमान है जिसे शास्त्रीय संगीत में ढाला जा सकता है। इस तरह अपने गीतों की रचना द्वारा वह इस भ्रम को तोड़ देने के लिए ही अधिक प्रयत्नशील दिखाई देते हैं कि खड़ी बोली के शब्द बंधों में गायन की संभावनाएं हैं ही नहीं। अपनी गीत रचना द्वारा इस विचार का वह बड़ी तीव्रता से खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। अतः निराला के सामने समस्या अपने गीतों को लेकर सुरों के प्रयोग की नहीं, बल्कि शास्त्रीयता के कुशल निर्वाह की ही है। इस धरातल पर हम कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ उनसे बड़े कवि हैं, क्योंकि क्योंकि उन्होंने अपने गीतों को शास्त्रीय स्वरलिपि बनाने की उतनी चिंता नहीं की जितनी उसे तोड़कर कभी मिश्र स्वरों द्वारा कभी पश्चिमी संगीत का मिश्रण करके एक नए ढंग से संगीत का आविर्भाव करने की। इस प्रकार अपनी गीत रचना द्वारा रविंद्रनाथ का साध्य और उद्देश्य केवल साहित्यिक गीत लिखना ही नहीं है, बल्कि एक नए ढंग के संगीत आविष्कार भी है। रविंद्रनाथ का कंसर्न जितना गीत है उतना ही संगीत भी। इसीलिए उन्होंने सुर और शब्द के योग से हमेशा सुर का बहुत ख्याल रखा है। इसीलिए रविंद्रनाथ के गीत एक प्रकार की सप्रयत्न रची गई सिम्फनियाँ हैं। यह बात दूसरी है कि अपनी विराट प्रतिभा के बल पर उन्होंने संगीत की इस प्रधानता के बावजूद अपने गीतों में अर्थ संभार को क्षीण नहीं होने दिया है। पृष्ठ संख्या 90। इसके विपरीत संगीत और उसमें भी अनेक गीतों के माध्यम से किसी नए ढंग के संगीत का आविर्भाव निराला का उद्देश्य नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य हिंदी खड़ी बोली की असंगीतात्मकता के लांछन का प्रच्छालन भर है। इसीलिए गीतिका के अलावा उन्होंने अपने किसी दूसरे संग्रह के गीतों की स्वरलिपि का सवाल नहीं उठाया है। शायद उनके स्वयं के गीतों पर जो यह आरोप लगाया जाता रहा कि वह गाए नहीं जा सके, इससे भी प्रेरित होकर उन्होंने गीतिका में अपने गीतों के गायन पक्ष की सफलता का उद्घोष करते हुए उनके न गाए जाने का दोष ब्रजभाषा में तुतलाने वाले गवैये पर डाल दिया। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अपनी गीत रचना के द्वारा अपने आत्म साक्षात्कार को ही अभिव्यक्त करना है। गायन पक्ष पर बल देने और उसके महत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने गीतों में आत्म अभिव्यक्ति को कहीं भी कुंठित या अक्षरित नहीं होने दिया है। इसीलिए निराला एक जगह कहते हैं कि मेरा गाना भी कविता का ही गाना है। प्रबंध प्रतिमा, यानी कि उसमें कविता ही प्रमुख है। निराला का स्वर संधान या शब्द संगीत दरअसल अर्थ का संगीत है। उनके गीतों के गायन पक्ष पर यहाँ उन्हीं का विचार उद्धृत करना उचित होगा। यह निश्चय है कि ब्रजभाषा के पद गाने वालों के लिए साफ उच्चारण के साथ इन गीतों का गाना असंभव है। वो इतने मार्जित नहीं हो सके। मैं खड़ी बोली में जिस उच्चारण संगीत के भीतर से जीवन की प्रतिष्ठा का स्वप्न देखता आया हूँ, वह ब्रजभाषा में नहीं। ब्रजभाषा के पदों को गाने वाले उस्ताद, प्राचार्य, उत्तरी संगीत स्कूल के कलावंत, जिन्हें खड़ी बोली का बहुत साधारण ज्ञान है, मेरे गीत नहीं गा सकेंगे। यह मैं जानता था और इस ज्ञान के आधार पर गीतों की स्वरलिपि मैं स्वयं करना चाहता था, पर कुछ ऐसी परिस्थिति मेरी रही कि सब तरफ से अभाव ही अभाव का सामना मुझे करना पड़ा। एक अच्छे हारमोनियम की गुंजाइश भी मेरे लिए नहीं हुई। मेरी सरस्वती संगीत में भी मुग्ध रहना चाहती हैं, सोचकर मैं चुप रह गया, क्योंकि मैं बाजार का नहीं बन सका। शायद इसीलिए सरस्वती ने मेरे स्वरों को बाजारू नहीं बनने दिया। गीतिका की भूमिका पृष्ठ 12। इन पंक्तियों में कवि के कई तरह के आशय और दर्द व्यक्त हुए हैं। अपनी सरस्वती को संगीत से मुक्त रखने का यह अंतिम निर्णय भी रविंद्रनाथ के ठीक प्रतिकूल पड़ता है। शायद इसी स्तर पर जाकर या इसी तरह की अनेक स्थितियों से गुजरते हुए निराला रविंद्र ग्रंथ के शिकार हुए होंगे। दरअसल जैसा कि मैंने अभी कहा, निराला का अंतः संगीत उनके आत्म साक्षात्कार की सघनता का दरअसल जैसा कि मैंने अभी कहा निराला का अंतः संगीत उनके आत्म साक्षात्कार की सघनता का परिणाम है। वह वास्तव में कथ्य का संगीत है, अर्थ संधान का संगीत है। उनकी शब्द गीत ही उनकी इन रचनाओं में प्रमुख है। उन्हें गाया जाए या ना गाया जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वह अपने संपूर्ण अर्थ संभार से हमारे पृष्ठ संख्या 91 भीतर झंकृत होती रहती हैं। शब्द दर शब्द उनके द्वारा संकेतित अर्थ को हमारे भीतर गाता चलता है। यह गायन एक तरह का अबूझ मौन गायन है, स्वर रहित, आनंद अतिरेक से पूर्ण, अनाहत अनुभूत। वह कहीं भी खंडित नहीं होता। उसके लिए किसी शास्त्रीय स्वर या नए आविष्कृत सुर की जरूरत भी नहीं पड़ती। अपने इस अंतः संगीत द्वारा निराला अर्थ संगीत के लय की सूक्ष्मता की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। मौन की भीतरी भाषा से अर्थ के बाहरी संसार में आकर वे फिर अपने उसी मौन द्वार से धीरे धीरे लुप्त होते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह उनके इस अंतः संगीत की काव्य यात्रा मौन से मौन तक की एक आत्म झंकृत की यात्रा है। बाहर वह खोया पाया मैला उजाला, दिन दिन होता जाता वयस्क, दिन दिन धुंधलाती आँखों से सुस्पष्ट देखता जाता था। पहचान रहा था रूप, पा रहा था वाणी और बूझता शब्द, पर दिन दिन अधिकाधिक हकलाता था। दिन दिन पर उसकी घिघी बंधती जाती थी। सरस्वती पुत्र अज्ञेय।